हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन धाम मॉरिशस बनाका क्या आपका स्वागत है रविवार के आज इस प्रोग्राम में इंग्लिश एवरीबॉडी इज वेलकम सन फॉर संडे फीस श्री कृष्ण बलराम टेम्पल बना के हरे कृष्णा। सो फॉर अबाउट हाफ एन आवर विल डिस्कस द फिलोसॉफी ऑफ भगवद गीता को समझेंगे आधे घंटे के लिए हिंदी में इंग्लिश में दोनों में हिंदी में आधे घंटे के लिए भगवत गीता को समझने का प्रयास करते ठीक है ओके। तो एक श्लोक भगवत गीता का हम पढ़ते हैं तीसरे अध्याय से भगवान का भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के विषय में है। कर्म योग का वैसे मतलब होता है कर्म करना तो सबको कर्म तो करना पड़ता है कुछ कुछ काम कर रहे हैं ना सब लोग दुनिया में जो पैदा हुआ है उसको कुछ करना पड़ेगा कुछ करेगा तो उस कोई भी काम करोगे तो उसका फल मिलेगा अच्छा होगा या बुरा होगा वो भोगना पड़ेगा है ना। तो कर्म योग का मतलब है कर्म करो लेकिन उसके फल को भोगने से बच जाओ। कर्म करने का मतलब है काम करोगे तो काम करने के बाद उसका फल मिलेगा तो फल आपको भोगना पड़ेगा लेकिन कर्म योग का मतलब है कर्म करो लेकिन उसका फल भगवान को दे दो तो आपको नहीं भोगना पड़ेगा तो आप भोगने से बच जाओगे। तो ये बात के ऊपर एक अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से। अर्जुन क्या करता है एक प्रश्न पूछता है भगवान से। अर्जुन वाच अर्जुन बोलता है अथकेन प्रयोक्तो यम पापम चरति पुरुषः अन इच्छन वार क्षणेह बलादिव नियोजितः। इसका अर्थ है अर्जुन पूछता है अथकेन प्रयोक्तो यम पापम चरति पुरुष। कोई भी इंसान इस दुनिया में पाप कर्म क्यों करता है पाप क्यों करता है कोई अतकेन क्या कारण है पाप करने का अतकेन प्रयोक्तो यम पापम चरति पुरुष। चरति का मतलब आचरण करना पाप का आचरण आदमी क्यों करता है चोरी क्यों करता है डाका क्यों डालता है किसी का गला क्यों दबाता है किसी को मारता क्यों है तो पाप क्यों करता है ये तो पहला है क्यों पाप करता है। फिर अर्जुन क्या कहता है अनिच्छन वार क्षणेय अनिच्छन का मतलब इच्छा नहीं है पाप करने की। वार्षणेय भगवान श्री कृष्ण का नाम है वृष्णी वंश में भगवान प्रकट हुए तो भगवान को कहते हे वृष्णी वंशी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहता है पाप नहीं करना चाहते हैं कौन पाप कराता है। और फिर क्या कहते हैं बलाद इव नियोजित बलाद बलाद का मतलब बलपूर्वक जबरदस्ती कोई पकड़ के नियोजित हमको पाप करा रहा है। नियोजित पता किसको कहते हैं आपके पास एक खेती करते हैं ना खेती अभी तो ट्रैक्टर से खेती करते हैं ट्रैक्टर पहले बैल से करते थे बैल से कभी बैल से करते थे या बेल से करते थे ना पहले तो बेल बेल देखा है आप लोगों ने गाय बैल बेल देखा ना बेल के कंधे के ऊपर लकड़ी रखते हैं और पीछे से हल लगाते हैं खेती करने के लिए और नहीं तो बेल को बेल गाड़ी में डाल के सामान उठा के ले जाते हैं। तो कोई बेल गाड़ी में खींचना चाहता है नहीं चाहता ना उसको क्या करते हैं नाक में रस्सी डालते हैं नाक में रस्सी डालते हैं बेल के नाक में रस्सी डालते हैं खींचते हैं उसको लाके गाड़ी के आगे खड़े करते हैं। तो नियोजति का मतलब है, अर्जुन कहता है हमारे नाक में कौन रस्सी डालता है बैल की तरह, लाठी मार के खींच के ले जाके पाप करने के लिए कौन खड़ा करता है। नियोजित शब्द का अर्थ है नाक में रस्सी डाल के जैसे बैल को जबरदस्ती गाड़ी खींचनी पड़ती है, बैल अपनी इच्छा से थोड़ी कहेगा मैं गाड़ी खींचूंगा, कौन खींचेगा, नहीं खींचेगा ना, पकड़ के ले जाना पड़ेगा उसको, पकड़ के ले जाना पड़ता है। तो ऐसे पाप कौन कराता है, तो यह प्रश्न है कि पाप कौन कराता है संसार में, जो पाप है वो पाप कौन करा रहा है। लोग आप जाएंगे ना बाहर कहेंगे अरे एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिलता है तो हम पाप करते हैं, तो भी भगवान कराते हैं, हम थोड़ी करते नहीं। बीमार हो जाओगे अस्पताल में जाओ डॉक्टर साहब को तबियत दिखाओ, डॉक्टर साहब दवाई देगा, ठीक हो गया तो बोलेगा हाँ देखो हमारी दवाई कितना अच्छा है, ठीक हो गया ना, और अस्पताल में मर गया तो डॉक्टर क्या बोलेगा, भगवान ने मारा, हमने तो बहुत प्रयास किया था आपको बचाने का, मारा भगवान ने, बचाया हमने। ये दुनिया में कोई पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, तो पाप कौन कराता है, पाप कौन करा रहा है, यह अर्जुन का प्रश्न है। आपको यह प्रश्न कैसे लगता है, पाप कौन करा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर कहां से लाएंगे, आत्मा पाप करता है, आत्मा पाप कराता है या परमात्मा पाप कराता है, परमात्मा पाप करता है, कौन पाप करता है, यह हमको आज आधे घंटे में इस बात को समझना है कि पाप कौन करता है, पाप कौन कराता है, जो पाप हो रहे हैं संसार में इसका कारण क्या है, कौन संसार में हमसे पाप करा रहा है। पहली बात इसको हम सीखेंगे कि आत्मा पाप करता है या नहीं करता है, इसको पहले समझते हैं। पांचवें अध्याय भगवत गीता में एक श्लोक में भगवान कहते हैं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकं सृजते प्रभो, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकं सृजते प्रभो। आत्मा जो इस शरीर का मालिक है न तो कुछ कर्म करता है न किसी से कुछ कराता है, न कर्म फल संयोगम, और ऐसे भी नहीं है कि कर्म के फल की दलाली करता है, दलाली समझते ना, सामान इसका बेचो उसको बीच में पैसा कमाओ, तो आत्मा न कर्म करता है न कराता है और न ही कर्म के फल के बीच में खड़ा होता है। तो कौन कराता है, आत्मा नहीं करता, कौन कराता है, तब वहां एक शब्द लिखा हुआ है स्वभावस्तो प्रवर्तते। स्वभाव हमारा स्वभाव होता है ना, जो इसका स्वभाव बहुत क्रोध का है, इसका बहुत प्रेम का स्वभाव है, ये बहुत अच्छा आदमी है, इसका स्वभाव का मतलब हमारा जो नेचर है। तो पाप कौन कराता है, हमारा स्वभाव कराता है, परमात्मा तो नहीं कराते हैं। तो दूसरा श्लोक इसके बाद आएगा न दते कश्चित पापम, भगवान किसी के पाप का भागीदार नहीं है, तो क्या पुण्य, भगवान को पुण्य चाहिए, सब यज्ञ भगवान को दें, पाप हम अपने पास रखें, भगवान को तो बोलते न चैव सुकृतिम विभुः, भगवान किसी की सुकृति और पुण्य भी नहीं लेता, न भगवान पाप न पुण्य न पाप, किसी में भगवान का कुछ आए नहीं जाए नहीं, तो फिर कौन पाप कराता है। तब वहां लिखा है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढक गया है, तेन मुह्यन्ते जन्तवः, अब क्या हो गया, अज्ञान से ज्ञान ढक गया तो आदमी क्या बन गया, जन्तवः, जन्तवः मतलब जंतु मतलब पशु, तो आदमी पशु जैसा हो गया, और पशु क्या करता है, रास्ते में पशु जाता है, जो चाहे किसी को मारे, कहीं चाहे वहां पेशाब कर दे, चाहे जिसको धक्का दे दे, उसको कोई पूछने वाला तो है नहीं, ऐसे इंसान पशु बन गया है, जन्तवः। क्यों जंत बन, पशु कैसे क्यों बन गया, पशु समझते हो ना, जानवर बन गया, एनिमल बन गया, वैसे भी तो अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। अब जब सोशल शिक्षा दोगे नहीं तो बाकी क्या बचेगा, केवल एनिमल बचेगा ना। अज्ञान के कारण ज्ञान ढक गया है, इसलिए पशु जैसा काम करता है, जानवर जैसा काम करता है। तो पाप तो भगवान नहीं कराता है, पुण्य भी भगवान नहीं कराता है, आत्मा भी न कर्म करता है न कराता है, तो कौन करता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, हमारा स्वभाव हमसे पाप कराता है। स्वभाव तीन प्रकार का स्वभाव है, सतोगुण का स्वभाव, रजोगुण का स्वभाव, तमोगुण का स्वभाव। हमारा स्वभाव तीन गुणों से बना हुआ है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर पता है क्या देते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। पाप कराता है तुम्हारा रजोगुण, तुम्हारा स्वभाव जब तुम्हारा रजोगुण का होता है, रजोगुण में क्या होता है? लोभ। रजोगुण में होता है लोभ, मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए, इसको बोलते हैं लोभ। रजो राग आत्मक, रजो में आसक्ति होती है, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए। तो जब चाहिए चाहिए करते हैं, वो चीज हमको जब नहीं मिलती है तो क्या होता है? काम एश। तो जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं और इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या होगा? क्रोध एश, तब क्रोध आएगा। रजोगुण में हमारे को संसार में कुछ पाने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, और इस चाहने के पीछे भागते भागते, इच्छाएं तो सब किसी की पूरी होती नहीं है, तो जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपको क्या होगा? क्रोध आएगा, क्रोध आएगा ना। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, कहां से पैदा हुआ कामना? रजोगुण से पैदा हुआ। और भगवान कहते काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। महाशनो, ये कैसा है, कामना कैसी है, ये कामना कैसी है पता है? महाअश्नो, अश्नो पता है किसको कहते हैं? अश्नामी प्रियतात्मनः। आपने एक नवे अध्याय में एक श्लोक आता है ना, भगवान मांगता क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्य प्रच्छति तदहम भक्त्य उपरतम अश्नामी प्रियतात्मनः। प्रेम से देता है तो मैं खाता हूं, अश्नामी का मतलब खाना, और महाअश्नो का मतलब ऐसा ये काम पेटू है, कभी इसका पेट भरता ही नहीं। इच्छाएं ऐसी है कि अभी अगर आपको मानू 10 लाख रुपया चाहिए, मेरा घर बन जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, आपको 10 लाख रुपया मिलेगा, बोला ये तो थोड़ा कम पड़ता है, 11 होता तो ठीक है, 50 मिल जाए, नहीं नहीं 50 कम है, 1 करोड़ होता तो ठीक है, तो इसका पेट कभी भरता ही नहीं है। काम की तृष्णा कभी खत्म होती नहीं है। ऐसे भागवत में लिखा है और वेद में लिखा है, एक आदमी को पूरे संसार का धन सारा दे दिया जाए, सारे पशु दे दिए जाएं, सारी गाड़ियां, सारी मोटरें, सारी फैक्ट्री, सारी स्त्रियां उसको भोगने के लिए दी जाए, तब भी बोलेगा अभी थोड़ा कम है और चाहिए। तो इच्छा कभी पूरी नहीं होती है आदमी की, और इसमें काम एक शब्द में लिखा हुआ है, बहुवचन नहीं है, एक वचन है काम। सब इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा क्या है? इंद्रिय विषय भोग की इच्छा, काम। और भागवत में एक श्लोक ऐसा व्यास देव ने लिखा है, बड़ा उसको पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। क्या लिखा है? एकांत के स्थान में अकेला कहीं नौजवान लड़का और लड़की, चाहे वो बहन भाई हो, मां बेटा हो, या बहन भाई, मां बेटा, बाप बेटी, ये तीन समझे तो कितने उत्तम उत्तम ये रिश्ते हैं। ये संबंध कैसा है? बहन भाई, मां बेटा, बाप बेटी, ये तीन संबंध समझ रहे हो, संबंध समझ रहे हो ना, कितने सम्मान के संबंध हैं, एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा आदर होता है। लेकिन इनको भी भागवत में व्यास कहते हैं, व्यास देव जी एक अकेली जगह में कहीं नहीं साथ बैठना चाहिए, काम बहुत शक्तिशाली है। यह श्लोक पढ़ के जैमिनी जो शिष्य था व्यास देव का, बोला महाराज क्या कह रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, हम इतने सारे जति सती हैं, सन्यासी हैं, हमको काम क्या करेगा। जैमिनी अपने स्थान में जाके अकेला बैठा, रात हो गई, उसके स्थान में किसी स्त्री को आने का अधिकार नहीं था। तूफान लगा, बरसात पड़ने लगी, अचानक एक सुंदर स्त्री महाराज के दरवाजे के आगे खड़खड़ किया। महाराज ने देखा, क्यों आई हो, निकलो यहां, मैं नहीं मुंह नहीं देखना चाहता आपको। बोलते मैं कहां जाऊं, मैं अबला हूं, मैं स्त्री हूं, जंगल में हूं, बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है, मेरे को आश्रय दीजिए। बोला मैं आश्रम में जगह नहीं है। ऊपर उठा के देखा, उसका आंखों से जब देखा, काम आंखों के दरवाजे से अंदर जाता है, काम के अंदर जाने का दरवाजा आंख है। लक्ष्मण 14 साल भगवान राम के साथ रहे, चरणों से ऊपर कभी सीता माता को नहीं देखा। जब आभूषण गिरे हुए, गले का हार राम ने दिखाया कि ये बताएं आपको किसका है, लक्ष्मण जी सीता का तो नहीं है। बोला भैया मैंने चरणों से ऊपर कभी देखा नहीं है, कौन सा हार, पांव की कोई झाझर है तो मुझे बता दो। आंख से काम प्रवेश करता है। ऋषि ने देखा, बोला ठीक है तुम उस कुटिया के अंदर जाओ, रात को दरवाजा बंद करके बैठ जाना, वो कमरे में दरवाजा बंद करना, मत खोलना सारी रात, अगर मैं जैमिनी भी आके खटखटाऊं तो मत खोलना, और सुबह वहां से चली जाना, मेरे को मुंह मत दिखाना। थोड़ी देर रात का 10-12-11 बजा, जैमिनी ने उस बच्ची को जो देखा था, सुंदर स्त्री को, मन में आया कि इसको देखना चाहिए। अंदर में उसके काम उठने लगा, गया दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। बोलते क्यों नहीं खोलूंगी, महाराज ने मना किया। बोला मैं तो जैमिनी हूं, जैमिनी हूं। बोला उसने कहा जैमिनी आए तब भी मत खोलना। जैमिनी के लिए दरवाजा नहीं खोला, जैमिनी छत के ऊपर चढ़ा, छत को तोड़ा, तोड़ के अंदर कूदा, कूद के स्त्री के सामने गया, तो स्त्री क्या देखता है, इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ व्यास देव जी बैठे थे। बोला बेटा तुमको कहा था ना काम बहुत बलवान है, तुमको नहीं समझ में आया था ना ये इतना काम बलवान है। महाअश्नो, पेट नहीं भरता इसका, कितना भी तो पेट नहीं भरता। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर था ना, पूरे विश्व का विजयी, जिसने पूरे संसार के ऊपर विजय पैदा, अकेला पूरे संसार का राजा बन गया था। वो एक महात्मा के पास गया भारत में, कहा मेरे को आध्यात्मिक विद्या बताओ। उसने विद्या बताई, तो उसने बोला क्या चाहिए आपको। बोला मैं संसार का मालिक बनना चाहूंगा। मूर्ख, संसार तो तुमसे छूट जाएगा, तू भगवान प्राप्ति की बात कर। बोला महाराज मेरे को संसार चाहिए। चलो तुम्हारे को संसार चाहिए तो संसार ले लो। तो बोला आप गुरु जी आपको दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा में क्या दूं। तो बोला क्या दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, एक ऐसा बर्तन उठा के दे दिया। बोला इसमें कुछ अन्न के दाने डाल दो, चावल डाल देना। बोला चावल, महाराज हूं मैं, विश्व का मालिक हूं, हीरा दूंगा, मोती दूंगा, जवाहर दूंगा, सोना दूंगा, जो चाहे वो दे दो। आओ सिकंदर अपने खजाने में गया, कोष के अंदर जितना हमारे खजाने में हीरा मोती ला के इसमें डालो, गुरु जी को देना है। जो हीरा मोती ला ले वो भरे नहीं, वो डब्बा भरे नहीं, सारा सामान राज का डाला, डब्बा भरा नहीं। रोता हुआ आया, बोला महाराज ये कौन सा बर्तन दे दिया, ये भरता नहीं है। और तब गुरु जी ने ऐसे करके उस डब्बे को उल्टा करके दिखाया, वो इंसान की खोपड़ी थी, खोपड़ी, वो हड्डी की खोपड़ी थी। उसने बोला ये खोपड़ी के अंदर पूरी दुनिया डालो तब भी नहीं भरेगी, तो ये इतना खोपड़ी खराब है, इसमें दुनिया पूरी डालो तब भी पेट भरने वाला नहीं है। काम है महाअश्नो, महाअश्नो का मतलब जितना चाहे इसको देते जाओ, तब भी बोलेगा और लाओ और लाओ और लाओ। एक गोवर्धन परिक्रमा में कभी गए हैं, उधर एक जगह है उसका नाम है अणियोर। आनी और का मतलब आनी और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। जितना प्रसाद ले गए थे ब्रजवासी, भगवान श्री कृष्ण यहां खड़ा था बच्चे के रूप में नंद बाबा के पास, और दूसरे रूप में गोवर्धन का रूप धारण किया, जो प्रसाद दे गुरु खा लिया, फिर लाओ और लाओ और दिया खा लिया। कुछ हमारे जैसे ऐसे भक्त कुछ आते हैं प्रसाद के बहुत शौकीन होते हैं, वो खरीद बोला ये सब खा गया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं, हमारा क्या होगा, ये आपका आज संडे फीस का प्रसाद पड़ा है, थोड़ी देर के बाद हम बोले सब खा जाएंगे, हाँ और लाओ, तो फिर तो पीछे वाला कुछ कहेगा अरे भाई ये तो सब चला गया, कुछ तो बचाओ, तो आनी और लाओ और लाओ और लाओ। तो भगवान ने देखा बेचारा इनके लिए तो मेरे दुखी हो रहे हैं पीछे कुछ, पर फिर सारा प्रसाद करके वापस दे दिया गोवर्धन ने, अब तुम प्रसाद खाओ और सुखी हो जाओ। लेकिन ये तो क्रोध और ये काम ऐसा है पेट भरेगा नहीं, तो पेट नहीं भरेगा तो क्या करोगे, मानो एक आदमी बहुत भूखा है उसका पेट भरा नहीं है दो चार दिन, क्या करेगा, भीख मांगेगा, पहले कोई भीख नहीं देगा तो चोरी करेगा, चोरी करेगा ना, तो कहते महाशनो महापाप मा, तुमसे बड़े से बड़ा पाप करा देगा, ये पाप कराएगा तुमसे, कौन पाप कराएगा, काम तुमसे पाप कराएगा। विद्या ही वेरी नाम, विद्या का मतलब जान लो अर्जुन, तुम ये जान लो ए इंसान, तुम ये जान लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी ये इच्छाएं हैं, ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा दुश्मन है, जिसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। इस दुनिया में हम आए क्यों, क्योंकि हमने इच्छा की। जीव को केवल इच्छा करने का अधिकार है, और ये हमने केवल इच्छा की, इच्छा किसने की, जीव आत्मा ने इच्छा की, परमात्मा ने अनुमति दी और प्रकृति ने उपकरण दिया, सामान दिया, शरीर दिया कि इच्छा पूरी करो। शरीर किसने दिया, प्रकृति ने दिया, अनुमति किसे, अनुमति देने का मतलब क्या है, अब बच्चा आगे कभी आपको बहुत परेशान करता है मेरे को ये लेके दो, मेरे को लेके दो, नहीं लो बेटा मत लो मत लो मत, नहीं मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, क्या कहोगे, अरे भाई लो हमारी जान छोड़ो, तुम गिरेगा तो तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारे से बंधे हुए नहीं है। तो अनुमति का ये अर्थ है कि भगवान से मांगते हैं तो कहते जाकर तुम लो, इसके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं हूं, क्योंकि तुमने मांगा है इसलिए दे रहा हूं। तो कौन पाप कराता है, काम, इच्छा जो रजोगुण से उत्पन्न होती है, इसलिए रजोगुण में है इच्छा, और जब पूरी नहीं होती है तो हम जाते हैं नीचे की तरफ तमोगुण में, तमोगुण में है क्रोध, क्रोध आता है तमोगुण में, मोड ऑफ पैशन इज डिजायर लस्ट, डिग्रेड डाउन नीचे गिरो इट इज इग्नोरेंस दैट इज एंगर। और दूसरे अध्याय में हमने ये लाइन पढ़ी है पूरी, ध्यायते विष्यान पुंशः, ध्यायते विष्यान, विषय, विषय किसको बोलते हैं, जिसमें इंद्री जाके अटक जाए, इंद्री मतलब आंख, ओके, आंख के लिए क्या, देखने के लिए जो चीज चाहिए, सुंदर सूरत, किसी का सुंदर चीज देखनी, तो आंख का काम क्या, देखना, तो देखने की जो वस्तु है उसको बोलते हैं विषय, आंख, आंख का विषय देखने के लिए जो देखने की चीज है वो। अब देखो आप आज सुबह घर से निकले ना, गाड़ी चलाते हुए आए यहां तक ना, कितने लोगों को देखा, कितनी गाड़ियां देखी, बहुत देखा कि नहीं, कितने लोगों को देखा, हजारों लोगों को सब मुंह देखा होगा ना, इतने सारे मुंह देखे लेकिन कोई आंख आपके अंदर चपका तो नहीं ना, तो देखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अचानक सामने से आप जिसको जानते हो वो आ जाएगा तो हरे कृष्णा, तो आपकी आंख उसको पकड़ लेगी, जब पकड़ लेगी उसको, तो ऐसे देखते तो है सारा दिन, आंख को देखने का काम है, कान सुनने का काम करेगा, लेकिन जब उसमें आपकी आसक्ति हो जाएगी, ध्यायते विष्यान, ध्यायते मतलब उसको आपने अगर ध्यान किया, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, हां ध्यायते पुंछ ते संगस्तेषु अपजायते संग, उसमें तो आसक्ति हो जाएगी, अरे ये तो मेरे को मिलना चाहिए, संगात भवते संगोह ना, क्या बात है,
जायते विषयान पंच संगस्तेषु अपजायते संगात जायते काम संगस जायते काम। अब मैंने कहा कि ये मुझे मिलना चाहिए और किसी ने कहा भाई तुम्हारा नहीं है तुम नहीं लो, नहीं नहीं मेरे को चाहिए, नहीं मेरे को दो, नहीं मेरे को चाहिए, तो क्या हो जाएगा? क्रोध कामाद क्रोधो भवती, फिर आ जाएगा क्रोध, क्रोधाद सम्मोह, क्रोध आ गया तो कुछ पता नहीं लगा कि मेरा भाई है कि बहन है कि चाचा है कि मामा है। घर के अंदर क्रोध आता है तो बाहर देते हैं ना। कल एक डॉक्टर बता रहा था हमारी अस्पताल में, एक बूढ़ा बाबा आया, सर के मुंह सारा चोट था, हमने बोला किसने बोला, बोला मेरे बेटे ने मारा। क्यों मारा? शराब पी के आया था, उसको पता नहीं लगा, रोटी मांग रहा था, रोटी में दिया देर हो गई इसलिए मेरे मुंह को मार दिया। क्यों मार दिया? क्रोध आ गया। क्रोध आ गया क्या हुआ? पता नहीं लगा मेरी मां है कि बाप है। संग मोहं बुद्धि नाशात, बुद्धि नाश हो जाती है, फिर वापस संसार में आके आदमी गिरता है। इसलिए श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि काम से नीचे क्रोध में मत गिरो, रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में जाओ, रजोगुण से उठ के सतोगुण में जाओ, इच्छाओं को कुछ कम करो, एक इच्छा करो भगवान के दर्शन की, भगवान का कथा सुनने की, भगवान का कीर्तन करने की, भगवान का प्रसाद खाने की, ये इच्छा करो। भोग की इच्छा मत करो, भजन की इच्छा करो, तो क्या होगा? तो आस्ते आस्ते पाप से हम बचते जाएंगे। तो पाप से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी इच्छाओं को बदलना पड़ेगा। जो इच्छाएं इस वक्त हमारे को भोग ऐश्वर्य परसक्ता नाम तया पहर्त चेतसाम, भोग की और ऐश्वर्य की लालसा जो है, सब कुछ मेरे पास इकट्ठा हो जाए और मैं भोग करूं, भोग करूं मतलब मैं अभी मेरे को दो, और ऐश्वर्य का मतलब इकट्ठा करके कुछ रखूं बाद में काम आएगा। जिसके मन में ये दो चीजें हैं, भोगेश्वर्य पर सकता नाम तया पहर्त चेतसाम, उसकी बुद्धि हरण हो जाती है, उसके पास बुद्धि नहीं रहती है। जिसकी बुद्धि चली जाएगी उसके बाद बाकी क्या होगा? बुद्धि न, बुद्धि ने उसको पागल बोलेगा, पागल किसी काम तो है नहीं, जो कुछ आए कुछ भी करेगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश होगी तो नीचे जाके गिरेगा। तो पाप कौन कराता है? हमारा स्वभाव। कौन सा हमारा स्वभाव? रजोगुण का स्वभाव। रजोगुण में के स्वभाव में क्या होता है? लोभ होता है। लोभ से इच्छाएं उत्पन्न होती है, ये मेरे को मिलना चाहिए, वो मेरे को मिलना चाहिए। इच्छाएं पूरी नहीं होती है, क्रोध होता है। इच्छा दिखती नहीं है, इच्छा नहीं दिखती है। हमारे अंदर इच्छा है लेकिन आपको दिखेगी नहीं, लेकिन क्रोध दिखता है। किसी आदमी को क्रोध है उसको आप तो पहचान लोगे ना, गुस्सा है पता लगता है ना, किसी आदमी का मुंह देख के पता लगता है क्रोध है इसको कि नहीं। आप क्रोध का मुंह देखना चाहते हैं? जो आदमी का जिसको क्रोध है उसका मुंह देखना आपको अच्छा लगता है? इसलिए किसी ने बोला क्रोध आए तो क्या करें? वो कोई माता जी ने हमसे पूछा, माता जी ने पूछा हमको गुस्सा आता है हम क्या करें? हमने बोला आपके पर्स के अंदर एक आईना होता है ना मेकअप का, बोला हाँ है। मैंने गुस्सा आए तब अपना मुंह देखना, देखो तो भी अच्छा लगता है, अपना मुंह अच्छा नहीं लगेगा। क्रोध में अपना मुंह देखो तो सही कैसा होता है। क्रोध का अपना मुंह कभी देखना, आप कभी क्रोध करोगे नहीं, अच्छा है दूसरा देखते हैं, अपना मुंह ना देखते देखो, क्रोध में कभी देखो अपना मुंह है होता कैसा है। तो क्रोध, क्रोध इच्छा पूरी नहीं होती है इसलिए आता है। और इच्छाएं ऐसी हैं जो कभी पूरी होने वाली है नहीं, इसका मतलब सदा क्रोध आता रहेगा। इच्छाएं तो मां अश्नो है, पूरी होने वाली है ही नहीं, तो क्रोध आता रहेगा। और फिर क्रोध आता रहेगा तो हम पाप करते रहेंगे। इसलिए करना क्या चाहिए? हमारी इच्छाओं को बदलना पड़ेगा। कृष्ण भावना, ये जो हमारी संस्था है, जो आप इस संस्था के सदस्य है, इसका उद्देश्य है आपकी इच्छाओं को बदलना। इच्छा खत्म नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा खाने की इच्छा है, हां इच्छा करो लेकिन प्रसाद खाओ, आपको सुंदर चीज देखने की इच्छा है, आओ भगवान का सुंदर दर्शन करो। आपको अच्छा सुनने की इच्छा है, आओ भगवान के कीर्तन सुनो, कथा सुनो भगवान की। तो आपकी इच्छाओं को क्या करना है, आपकी इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म करना है, स्पिरिचुअलाइज करना है उसको, जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको आध्यात्मिक में परिवर्तन करना है। कैसे होगा, जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, लोहा होता है ना, लोहे को आग में डाल देंगे, आग में लोहे को डालेंगे तो लोहा गर्म होगा, गर्म होते होते लाल हो जाएगा, जैसे आग जैसा हो जाए, किसी को लगाओगे तो वो जल जाएगा। तो लोहा आग के संग में लाल आग जैसा हो जाता है, ऐसे भगवान के भक्तों के संग में आपकी इच्छाएं भौतिक खत्म होकर आध्यात्मिक हो जाएंगी, तब आपको क्रोध भी आएगा तो हनुमान की तरह लंका जलाने के लिए काम आएगा, घर नहीं जलाओगे। अभी तो क्रोध में आप अपना घर जलाते हो ना? क्रोध किसके ऊपर करते हो, घर में करते हो ना? सास बहु क्रोध करते नहीं करते घर में? किसी ने पूछा सास किसको बोलते हैं, बोला जिसको देखने से सांस बंद हो जाए। तो हमने बोला कल तुम सांस हो जाए बनोगी, कल तुम भी तो सांस बनोगी, तेरा बेटे की शादी होगी, फिर तो तुम्हारे को देख के भी किसी का सांस बंद हो जाएगा। इसलिए जरा प्रेम करो बच्चों से, परिवार में प्रेम करो। तो प्रभुपाद ने लिखा है, ये जो काम है ना लस्ट, इसको प्रेम में परिवर्तित करो। असल में कृष्ण प्रेम हमारा नित्य सिद्ध अधिकार है, और जब कृष्ण से प्रेम को हमने हटाया है तब संसार में वो प्रेम काम बन गया है। तो काम और प्रेम में अंतर क्या है, काम का उद्देश्य है मुझे सुख मिलना चाहिए, और प्रेम का उद्देश्य है जिससे प्रेम करते हैं उसको सुख दे। संसार में काम है लेकिन भक्तों के हृदय में प्रेम है, तो काम को प्रेम में परिवर्तित करो, ट्रांसफॉर्म द लस्ट इनटू लव बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति, प्रेम भक्ति के अभ्यास करने से अपनी काम को प्रेम में परिवर्तित कीजिए। इस जन्म में कीजिए, टाइम मत गंवाइए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, अभी कीजिए कि अपने काम को भगवत प्रेम में परिवर्तित कीजिए। ट्रांसफॉर्म योर लस्ट इनटू लव एंड रिपोज ऑल इनटू कृष्णा। देन बहुत अच्छा पांचवें अध्याय में एक श्लोक है, इस शरीर के छूटने से पहले तुच्छ इच्छाओं को अगर रोक सकते हो तो आप इस संसार में मुक्त हो, बेपरवाह होके घूमो, कोई चिंता नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है पांचवें अध्याय का। इस श्लोक के दो शब्द सुन लीजिए फिर कथा समाप्त करते हैं, टाइम हो गया। इस श्लोक का शब्द है, प्राक शरीर विमोक्षणात् शोढ़ुम। दो शब्द बहुत अच्छा है, क्या है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण बलराम की शक्ति। शक्नोति हैव षोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं संयुक्त स सुखी नरः। अगर संसार में सुखी रहना है, अगर संसार में सुखी रहना है तो क्या करो, शक्नोति, शक्नो का मतलब हो सकता है, आपसे कर सकते हो, भगवान पूछते हैं कर सकते हो ना, अगर कर सकते हो तो करो, क्या करो, थोड़ा सा सहन कर लो। किसको सहन करें, बोलते काम क्रोध के वेग को, काम क्रोध उद्भवम वेगम। वेग किसको कहते हैं? वेग तूफान आता है उसको वेग कहते हैं। तो काम क्रोध के वेग को थोड़ा सा सहन कर लो। कब तक करें? अर्जुन पूछे कब तक करें, तब कहते हैं प्राक शरीर विमोक्षण, जब तक ये शरीर खत्म नहीं है तब तक करते रहना। जब तक ये शरीर खत्म नहीं हो तब तक इसको सहन करना है। तो मिलेगा क्या? सुख मिलेगा। फिर आपको सुख चाहिए तो तब सुख का यही रास्ता है। जब तक ये शरीर है तब तक काम क्रोध कभी किसी वक्त भी आएगा। एक बार अब क्या करें, समाप्त करें कथा को? एक प्रभुपाद की किताबों में कथा ऐसी लिखी है कि अकबर बीरबल, बीरबल से पूछे काम कब खत्म होता है, तो बीरबल ने कहा महाराज जब तक मरता नहीं है तब तक काम खत्म नहीं होता है। बोला ऐसे कैसे होगा, बूढ़े आदमी क्या काम करेगा, बूढ़े को कहां से काम तो हो नहीं सकता बूढ़े को। बोला हां महाराज आप ऐसे करो, आपकी नौजवान लड़की है ना, जो बच्ची आपकी जो लड़की है वो मेरे आपके साथ ले चलो, बताना किसको मत। सबसे बूढ़ा आदमी 80 साल का जो मरने वाला है सांस ऐसे ले रहा, उसके पास चलना, आप चुप करके खड़े होना। अकबर महाराज, शहंशाह अकबर अपनी बेटी सुंदर साथ लेकर बीरबल के साथ उस बुड्ढे के पास अस्पताल में गया, और जो बुड्ढा मरने वाला था, और बुड्ढा मरते मरते तीन आया और लड़की को ऐसे देख रहा है, लड़की को देख रहा है। बीरबल कहता है महाराज देखो तू राजा है, तुम्हारे को नहीं देख रहा है, मैं मंत्री हूं मेरे को नहीं देख रहा है, मरते हुए भी देखो इस लड़की को देख रहा है, अभी तक इसका काम गया नहीं है। देखो जब तक मरता नहीं है तब तक काम रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं शक्नोति हैव छोड़ुम, छोड़ुम का मतलब अगर तुमसे सहन हो सकता है तो सहन कर लो, तुमसे अगर हो सकता है तो सहन करो। बोला क्या सहन करूं? काम क्रोधो उद्भवम वेगम। काम और क्रोध से जो वेग अंदर में उत्पन्न होते हैं, वेग कहते हैं, जैसे तूफान को बोलते हैं वेग, वेग का मतलब एक उछल आती है, जैसे समुद्र में कभी वेग आता है ना, पानी बाहर आता है, इस वेग को अगर तुम सहन कर सकते हो कब तक? प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक ये शरीर समाप्त नहीं होता है। तो कितने दिन ये शरीर रहेगा? हाउ लॉन्ग दिस बॉडी विल लास्ट? अगर 60-65 साल जीते हो तो उसमें से 25 साल तो सोने में चले जाते हैं, सोए रहते हो, तब तो काम वैसे ही अपने आप सो गया, बचपन में तो बातें खत्म हो गई। और 5 साल तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बस की लाइन में, टिकट लेने की लाइन में, बिल पे देने की लाइन में, उधर भी काम नहीं होगा। 5 साल इंसान का लाइन में खड़ा होता है, जिंदगी का ये हाल है। बाकी थोड़ा सा बच गया है, वो काम क्रोध के वेग को सहन कर लो। तो सयुक्त ससुखी नर, वो आदमी, वो वेग, वो कैसा मानव है, वो पुरुष कैसा है? युक्त। युक्त का मतलब क्या है? मेरे से जुड़ा हुआ है, वो मेरे से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए वो सुखी है। तो सुख कहां है? सुख कहां है? ये बहुत अच्छा भगवत गीता का दूसरा श्लोक है, दूसरे अध्याय में अयुक्तस्य का सुखम, जो मेरे से युक्त नहीं है उसको सुख कहां से मिलेगा? युक्त का मतलब जो मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है, जो भगवान से जिसका संबंध स्थापित नहीं है उसके पास सुख नहीं है। तो सुख कहां है? भगवान के संबंध में। अब ये छोटा सा एक कहानी सुन लीजिए, ये छोटा सा बच्चा है ना, क्या नाम है? हाँ शब, ऋषभ। ओ ऋषभ, और ऋषभ, ऋषभ महान महान। ऋषभ किसका बेटा है? ओ माता जी का बेटा है। ओके, ओ माता जी बेटी। अच्छा ये ऋषभ में तो छोटा बच्चा है, इसका ये पिताजी का हाथ पकड़े और चला जाए बहुत बड़ा एक फेस्टिवल के अंदर, बड़ा फेस्टिवल है तो बड़ा खुश हो जाएगा, बाबा बहुत अच्छा है पिताजी, तो उधर कुछ झूला झूल रहा है, बोलेगा इसमें चढ़ेगा, बाबा 2 रुपया दे, 5 रुपया दे, इसमें चढ़ो। अच्छा इसमें, ओ मिठाई देखे उधर, ओ बहुत है, अच्छा मिठाई बाबा लेके दो, बाबा लेके दो। फिर उधर जुजू 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 देखेगा, जुजू जूजू बाबा जूजू बाबा जूजू हाँ, आप कितना खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और उधर बहुत रश है ना? बहुत रश है उधर, और रश के अंदर इसका कोई बीच में आदमी आया, इसका हाथ पिताजी के हाथ से निकल गया, तो क्या करेगा ये उधर ऋषभ, उधर क्या करेगा, उधर पड़ा होगा जूजू, उधर पड़ा होगा मिठाई, उधर पड़ा होगा खिलौना, लेकिन ये रोएगा क्यों? तो सुख किसमें था? जूजू में सुख था, खिलौने में सुख था, झूले में सुख था, मिठाई में सुख था, कि बाप के हाथ में सुख था? बाप के हाथ में सुख था। ऐसे युक्त, युक्त का मतलब जिसका हाथ भगवान के हाथ में है, वो तो संसार में सुखी है, भगवान के हाथ से हाथ छूट गया तो सारी उम्र रोता रहेगा, ये सिद्धांत है। तो अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दो। ए माता जी लोग सब बैठे ना, आप भी पुरुष लेख बैठे हो ना, ए भारतीय जो वैदिक संस्कृति है उसमें एक शब्द होता है, आपने सुना है पाणी ग्रहण संस्कार, सुना है पाणी ग्रहण, सबका हो गया है, नहीं सुना है क्या? वो शादी होती है ना, उस पाणी हाथ को कहते हैं, और तब एक पंडित जी हाथ लेके वो जो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में बांधता है, सुना है, बांधा था कि नहीं बांधा था, पता है कि नहीं है, बांधा कि नहीं बांधा, हाथ लेके हाथ के ऊपर रखा जाता है। और एक बार हाथ पंडित जी ने उस कन्या का वर के हाथ में दे दिया, सारी जिंदगी उसको खिलाना पिलाना उसका पालन पोषण करने का जिम्मेवारी उठाता है कि नहीं उठाता है, उठाता है कि नहीं उठाता है, संसार में उठाता है ना। ऐसे ही जब साधु संत सदगुरु महाराज उठा के जीव का हाथ भगवान के हाथ में दे देता है ना, तो भगवान उसकी सारी जिम्मेवारी उठाता है। जब इस संसार का आदमी उठा सकता है कि भगवान नहीं उठा सकता है क्या? लेकिन हाथ आपका भगवान के हाथ में देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं युक्त। युक्त का मतलब जोड़ा, युक्त का मतलब जोड़ा होता है। तो हाथ भगवान के हाथ में जो देगा वो सुखी रहेगा। तब तक शांति नहीं आएगी जब तक हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक होगी तो शांति होगी, शांति होगी तो सुख मिलेगा। तो शांति से सुख में प्रवेश होता है, यह भी दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक है कि सुख कहां से मिलेगा। सयुक्त ससुखी नरह, वो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका हाथ उसने भगवान के हाथ में दे दिया है। किसने दिया है कोई पूछे? वो गुरुजनों ने उसका हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दिया है। बेटी का हाथ लड़के के हाथ में मां बाप नहीं देते हैं, पंडित जी देता है, ब्राह्मण करता है ये काम। यहां कैसे होता है मॉरिशस में? आजकल हाथ कहां देते हैं, आजकल सब लात मार रहे हैं एक दूसरे को। बहुत बड़ी समस्या है। डाइवर्स का मतलब लात मारना, जो तब से डाइवर्स आया तो हाथ वाला काम बिगड़ गया सारा। तो हाथ कौन देता है? पंडित जी देता है। ऐसे भगवान का शुद्ध भक्त भटके हुए बच्चे को, जीव को भगवान के चरणों में उसका हाथ भगवान के पास रख देता है, तो फिर वो संसार में ससुखी न रह वो सुखी हो जाएगा। नहीं तो महाशनो महापापमा विद्या एह वेरी नाम, नहीं तो फिर ये तेरा काम पेटू कभी पेट इसका भरेगा नहीं और तुमसे ये पाप कराता रहेगा। तो कहां रहता है काम? रहता कहां है? मेरा दुश्मन है ना, मेरा शत्रु है, तो कहां रहता है? पता लगे तो इसको मारूंगा। मन बुद्धि इंद्रिय अधिष्ठानम, कहां रहता है काम? कहां रहता है? मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में, तीन जगह रहता है। अब क्या करें, प्रोग्राम आरती में कितना टाइम लगेगा? पौने पांच तक, तो 15 मिनट कीर्तन क्यों नहीं करें? सब लोग खड़े होकर कीर्तन करना चाहिए, हाँ, ताकि हमारा काम प्रेम में परिवर्तित हो जाए। कथा बतानी थी मेरे को, एक कथा आ रही थी अंदर से, लेकिन कथा को अब इधर रोक देते हैं। आप उठ के कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा, धन्यवाद।